नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में बेमौसम बारिश और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 2600 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर। भारत और यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 8वां संस्करण आज से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू। वी श्रीनिवास ने आज राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। राजस्थान के विकास दर बढ़ाने को प्राथमिकता बताया। और सांसद खेल महोत्सव का आज से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुभारंभ। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में किसानों को 2600 करोड़ रुपए का आदान अनुदान देने का फैसला किया है। आपदा राहत मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि सरकार के इस फैसले से 43 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। ये राशि उन किसानों को दी जाएगी जिनकी 33% या इससे अधिक फसल खराब हुई है। इसके अलावा सरकार ने सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत और निर्माण के लिए भी 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है, जिससे सड़कें और सरकारी भवन सुधारे जाएंगे। आपदा के कारण हुई मौतों के मामलों में मृतकों के आश्रितों को भी 4-4 लाख रुपए की सहायता दी गई है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज हरियाणा के फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में राजस्थान सहित हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के दौरान दिल्ली लाल किला विस्फोट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में राज्य सरकारों के बीच समन्वय, जल बंटवारे के मुद्दों और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत किसी भी तरह के युद्ध का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देंगे और उसे प्रायोजित करेंगे, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा।
हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए, हम भी उसका साथ देंगे। जब तक ये नहीं होगा तब जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान। दूसरी चीज ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे।
सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो महज एक ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। सेना प्रमुख ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई गलत काम किया तो भारतीय सशस्त्र बल पड़ोसी देश को सिखाएंगे कि भारत के साथ कैसे जिम्मेदारी से पेश आना है। भारत और यूनाइटेड किंगडम का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 8वां संस्करण आज बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। यह द्विवार्षिक अभ्यास 30 नवंबर तक चलेगा। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के 240 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से इसमें सिख रेजिमेंट के जवान शामिल हैं। कर्नल नीरज बेनीवाल ने बताया कि इसका मुख्य फोकस शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियान पर है। यह संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सर्वोत्तम युद्ध कौशल और अनुभवों का आदान प्रदान करना और जटिल परिस्थितियों में साथ मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाना है। प्रदेश में स्टार्टअप्स कार्यक्रम के तहत 7,100 से अधिक स्टार्टअप्स को सहायता दी गई है। इन स्टार्टअप्स में 1,000 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश आया है, जिससे राज्य में 42,000 से ज्यादा रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। आई स्टार्ट पोर्टल अब उद्यमियों के लिए वन स्टॉप गेटवे बन चुका है, जो उन्हें फंडिंग, ट्रेनिंग और मुफ्त इन्क्यूबेशन जैसी सभी जरूरी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध करा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वी श्रीनिवास ने आज राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। जयपुर स्थित शासन सचिवालय में करीब 3:30 बजे निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उन्हें कार्यभार सौंपा। इस मौके पर प्रशासनिक तथा अन्य सेवाओं के कई अधिकारी मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्रीनिवास ने कहा कि प्रदेश के विकास दर को बढ़ावा देना तथा विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कई नवाचारों को केंद्र सरकार ने भी अपनाया है। जिन क्षेत्रों में प्रदेश का प्रदर्शन कमजोर है, उन्हें सुधारने के लिए प्रयास किया जाएगा।
जो जनविश्वास बिल का जो भारत सरकार का ड्राफ्ट बिल फॉर्मुलेट किया गया था, उसको आगे ले जाने के लिए प्रयास करूंगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर प्रोग्राम्स में राजस्थान को होलिस्टिक डेवलपमेंट विद सैचुरेशन अप्रोच लागू करना चाहिए, इसके ऊपर निरंतर प्रयास करेंगे। राजस्थान हमेशा कुछ मेजर एरियाज में वर्क रहता था, एग्रीकल्चर, IGNP, इरीगेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट तथा सोशल सेक्टर्स में हेल्थ फॉर ऑल में कई नवाचार हुए हैं। साथ ही साथ एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ऑपरेशनलाइज करने के लिए प्रयास करना है।
इसके बाद सचिवालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत को विदाई दी गई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के पुनर्विकास कार्यों के संबंध में आज जयपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ चंद्रशेखर कुमार ने की। बैठक में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अपर मुख्य सचिव और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में दरगाह परिसर में सुरक्षा, सफाई और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों के संसाधनों को एक साथ लाने पर जोर दिया गया। सचिव डॉ कुमार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की परियोजनाओं और उम्मीद पोर्टल पर वक्फ डेटा अपलोडिंग की प्रगति की भी व्यापक समीक्षा की। सांसद खेल महोत्सव का आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि खेल हमें फिट रखते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि जीत हार खेल का हिस्सा है, जिससे निराश होने की बजाय और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दिया कुमारी ने इस मंच को अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास विकसित करने का मौका बताया। जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि इन खेलों से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
जिन बच्चों को, जिन खिलाड़ियों को अभी तक, जिन्हों में टैलेंट है, जिनमें प्रतिभा है, लेकिन उनको अभी तक मौका नहीं मिला है बाहर आने का या किन्हीं वजहों से वो नहीं आ सके हैं, तो इन खेलों के माध्यम से वो प्रतिभाएं सामने आएगी और उनको तराशने के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उपकरणों की अगर कहीं जरूरत है तो वो भी संसाधन से भी उनको परिपूर्ण किया जाएगा और इस तरीके से देश के लिए खेल की प्रतिभाएं सामने आके देश के लिए मेडल लाएंगी। खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया।
इस अवसर पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। करौली में खेलो इंडिया अभियान के तहत आज मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में अस्मिता टेनिस बॉल बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई। जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 9 टीमों ने हिस्सा लिया। और अब मौसम। राज्य में कई स्थानों पर ठंड का असर तेज हो गया है। बीती रात माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 5.5, नागौर में 5.6, लूणकरणसर में 5.8, करौली में 7.6 और सिरोही में रात का पारा 7.7 डिग्री सेल्सियस मापा गया। ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 25 से 29 डिग्री के बीच मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर ने सीकर में अगले 3 दिन शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा झुंझुनू, टोंक, कोटा और नागौर में आज और कल शीतलहर चलने के आसार हैं। उधर ठंड बढ़ने के साथ सिरोही के माउंट आबू में पर्यटकों की आवक बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन दिनों माउंट आबू पर्यटकों से गुलजार है।
सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का असर तेज हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज सर्दी से जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं माउंट आबू घूमने आने वाले सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू घूमने के लिए पहुंच रहे हैं और यहां मौसम का आनंद ले रहे हैं। माउंट आबू के अलावा सिरोही जिले के विभिन्न स्थानों पर भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है और पर्यटक यहां के मौसम का आनंद ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने अपने परिवार सहित एसआईआर फार्म भरकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया है। उन्होंने आम जनता से इस कार्यक्रम में सहयोग की अपील की है। पाली में भी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत फार्म भरने के लिए विभिन्न इलाकों में शिविर लगाए गए। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ मंजू ने सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के तहत हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में बेमौसम बारिश और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 2600 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर। भारत और यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 8वां संस्करण आज से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू। वी श्रीनिवास ने आज राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। राजस्थान की विकास दर बढ़ाने को प्राथमिकता बताया। और सांसद खेल महोत्सव का आज से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।